शाम बताया था इल्मुल खुदा यानी खुदा के बारे में इल्म, तो उसी ज़मन में आज जो हमारा हवाला है वो है रोमियो अख़त, उसका पहला बाब और उसके 18वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। पौलुस रसूल का रोमा की कलीसिया के नाम खत, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से ज़ाहिर होता है जो हक को नाराज़गी से दबाए रखते हैं, क्योंकि जो कुछ खुदा की नस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बतन में ज़ाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर ज़ाहिर कर दिया, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती हैं, यहाँ तक कि उनका कुछ उज़र बाकी नहीं। इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की बल्कि बातल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया, वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ़ बन गए और गैर फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान और परिंदों और चुपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहरमत किए जाएँ, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज़्यादा परस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है, आमीन। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम को खिलाफ तबा काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से तबई काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूसियाही के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराज़गी बदी लालच और बदखाही से भर गए और हसद खूनरेजी झगड़े मक्कारी और बुगज से मामूर हो गए, और गीबत करने वाले बदगो खुदा की नज़र में नफरती औरों को बेइज्जत करने वाले मगरूर शेखीबाज बदियों के बानी माँ बाप के नाफरमान बेवकूफ़ अहद शिकन तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी नाफक्त आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो, आमीन।
Our first main lecture is on the existence of God.
जो हमारा आज का पहला मौजू है इसी सिलसिले में वो है खुदा की मौजूदगी।
The Bible does not set out to prove the existence of God.
जो बाइबल मुकद्दस है वो खुदा की मौजूदगी के बारे में बयान करती है।
The Bible presupposes everyone knows the existence of God.
हम इंसान सब जानते हैं कि खुदा मौजूद है।
These are its very first words.
ये चंद इब्तदाई अल्फाज हैं।
In the beginning, God created the heavens and the earth.
जो हम पैदाइश की किताब के पहले बाब की पहली आयत में पढ़ते हैं कि इब्तदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया।
One of God's names especially emphasizes his existence.
खुदा के लिए खास लफ्ज जो उसकी मौजूदगी को जाहिर करता है,
Jehovah, I am that I am.
वो नाम यहोवा है जिसका मतलब है खुदा ने कहा था मैं जो हूँ, सो मैं हूँ, ये उसकी मौजूदगी को जाहिर करता है।
Thus, the Christian creeds often confess God's existence in their very first words.
और जितने भी हमारे पास मसीही इकरारुल ईमान है वो तमाम इस बात को बयान करते हैं कि ये बयान जो है वो खुदा की मौजूदगी से मुतल्लिक है।
The Apostles' Creed begins,
जो रसूलों का अकीदा है,
I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth.
तो जो रसूलों के अकीदे की पहली आयत है वो या लाइन है वो उससे भी हम देखते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा का मतलब बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है।
The Nicene Creed is very similar.
और इस तरह से निकाया का अकीदा भी जो है वो भी इसी से मिलता जुलता है।
I believe in one God, maker of heaven and earth, Father Almighty, maker.
मैं ईमान रखता हूँ एक आदमी खुदा पर जो आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है या खालिक है।
And of all things visible and invisible.
और कुछ चीजें जो है वो अनदेखी हैं, कुछ अनदेखी हैं।
The Belgic Confession, a creed of 1561, its first article.
जब हम पहली तौज़ीह यानी पहला आर्टिकल है बेल्जिक इकरारुल ईमान का जो कि 1561 में लिखा गया।
Its title is There is one only God.
तो उसमें लिखा है कि सिर्फ एक ही खुदा है।
The article begins,
ये जो तौज़ीह है ये मज़मून है ये शुरू होता है
We all believe with the heart and confess with the mouth
हम अपने पूरे दिल और अपने ज़ुबान से इकरार करते हैं
that there is one only simple and spiritual being which we call God
कि एक ही हस्ती है जिसे हम खुदा के नाम से जानते हैं जिसे हम खुदा कहते हैं
So the existence of God clearly is not something debatable or dubious
और जो खुदा की मौजूदगी है वो कोई ऐसा मौजू नहीं है जो मशकूक है
The existence of God is absolutely certain
और इसलिए खुदा की मौजूदगी जो है वो एक यकीनी बात है
Arslan read Romans 1 verses 18 through 32
तो जो मैंने आयत पढ़ी वो 18 से 32 तक
It speaks of the witness to the existence of God
तो ये गवाही देती हैं ये बयान करती हैं कि किस तरह खुदा मौजूद है
फ्रॉम जनरल रेवलेशन namely creation and providence
तो इलाहियात में एक जो है इस्तलाह इस्तेमाल होती है आम मुकाशरा जो कि हमें फितरत में और तखलीक में नजर आता है
creation and providence testify that god is invisible verse 20
khuda ki takhleeq hai aur uski jo parvardigari ke kaam hai wo khuda ki maujoodgi ka izhar karte hain
that god is eternal pre-existing the universe he formed verse 20
khuda jo hai wo azli aur abadi hai aur is kainat ke banaye jane se pehle se maujood hai
that god is all powerful verse 20
aur khuda jo hai wo qadir mutlak hai yani sab cheezon par ikhtiyar rakhta hai
that he possesses a divine nature as a whole
और वो इलाही फितरत रखता है
and that includes all sorts of perfections verse 20
तो जो उसकी इलाही फितरत है जिसके बारे में हमने कल रात भी सीखा कि वो कामिल है उसकी हर बात में हर चीज में उसके हर सिफ्त में कामलियत पाई जाती है
creation witnesses that god is glorious verse 23
तखलीक जाहिर करती है कि खुदा जो है वो जलाली है पुरजलाल है
god's glory is not an attribute as such
खुदा की जो उसका पुरजलाली होना है ये उसकी कोई सिफत नहीं है
God's glory is his divine brilliance reflecting all of his divine perfections.
Balki khuda ka jo jalal hai wo uski jo jitni bhi uski khususiyat hai unka izhar hai.
Creation testifies that God is incorruptible verse 23.
Aur jo takhleeq hai wo ye zahir karti hai ki khuda mein kisi bhi tarah ka koi bhi naqs nahi hai.
He is immortal and imperishable.
Aur wo jo hai wo lafani hai yani wo kabhi bhi khatam nahi ho sakta.
For he is life.
और वो अपने आप में जिंदगी रखता है
क्रिएशन एंड प्रोविडेंस टेस्टिफाई ऑफ गॉड्स ट्रुथ वर्स 25
तखलीक और खुदा की परवरदिगारी जो उसकी सच्चाई को बयान करती हैं
इट टेस्टिफाइज दैट गॉड इज ब्लेस्ड
वो ये गवाही देती है कि खुदा जो है वो बरकत देने वाला है या मुबारक है
इनफिनिटली रिच एंड हैप्पी
और वो बहुत ज्यादा जो है वो भरपूर और मामूर है और खुश है
ब्लेस्ड फॉरएवर वर्स 25
और वो हमेशा जो है वो मुबारक है
Creation and providence testify to God's justice.
और तखलीक और परवरदिगारी के जो काम है खुदा के वो उसके अदल को या इंसाफ को जाहिर करते हैं.
For verse 32 refers to the judgment of God.
और जो आयत 32 है वो उसके इंसाफ को जाहिर करती है.
Which rests upon His righteousness and justice.
और उसकी रास्तबाजी को और उसके अदल को.
Let us go further.
अब इससे आगे बढ़ते हैं.
I want to make two points explicit.
मैं यहां पर दो खास जो बातें हैं वो बयान करूंगा
नंबर वन
पहली बात
द विटनेस ऑफ क्रिएशन एंड प्रोविडेंस इज दैट गॉड इज वन
तखलीक और परवरदिगारी यानी जो कुछ परवरदिगारी कहते हैं जो कुछ यानी हम रोज करते हैं हमें उसका यानी जो हम देखते हैं फितरत में कि बादल बरसते हैं रात होती है दिन होता है ये उसकी परवरदिगारी के काम है या कीड़े कैसे खाते हैं ये सारा कुछ ठीक है तो इससे हमें यह पता चलता है कि खुदा जो है वो एक है जो ये सारा कुछ कर रहा है
God is not plural but singular
खुदा जो है वो बहुत सारे नहीं है बल्कि सिर्फ एक है
There is only one God not plurality of gods
यानी सिर्फ खुदा जो है वो सिर्फ एक है और बहुत सारे देवी देवता नहीं है जिस तरह हिंदू मानते हैं
Number 2
दूसरी बात
The witness of creation and providence is that God is personal
फिर हम ये देखते हैं खुदा शख्सी जो है वो सिफात रखता है यानी उसमें शख्सी बातें पाई जाती हैं
He is not an impersonal force
अब वो कोई कुवत नहीं है महज कुवत नहीं है
Throughout Romans chapter 1
आज जब हम रोमियो का जो पहला बाब है वो पढ़ते हैं
God is referred to as he his him
तो उसके लिए वहां पर इसमें ज़मीर इस्तेमाल हुए हैं कि वो ये करता है ये उसने किया यानी जिस तरह हम इंसानों के लिए करते हैं
To conclude
ये इसको अखलासा करने के लिए
This is the witness of general revelation in creation and providence regarding God.
तो इससे हमें पता चलता है कि जो आम मुकाशवा है वो खुदा की तख्लीक और उसके परवरदिगारी के कामों में नजर आता है.
He singular is invisible and eternal.
वो नादीदा है यानी उसे कोई देख नहीं सकता और फिर ये कि वो असली और अब्दी है.
All powerful and incorruptible.
और वो कुदरत कामला रखता है और उसमें किसी भी तरह का कोई भी नक्स नहीं है.
True and just.
वो सच्चा है और आदिल है.
In all his attributes and deity.
उसके तमाम उसकी अलूहियत की तमाम खसूसियात जो है.
He is glorious and blessed forever.
और वो हमेशा के लिए जो है वो मुबारक है और जलीलुल कदर है.
We have considered briefly God's glorious existence and attributes.
हम खुदा की जो सिफात है और उसकी जो पुरजलाली शख्सियत है उसके बारे में सीखते हैं.
The witness of the universe also testifies to God's works.
और जो उसकी सिफात है उसके काम है वो उसके
works.
उसके कामों को जाहिर करते हैं.
He created the world in the beginning.
उसने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया.
He providentially upholds and governs the world he created.
और फिर जो कुछ उसने बनाया वो उस सब पर हुकूमत करता है.
For proof, verse 20.
और उसका सबूत जो है वो 20वीं आयत है. लिखा है कि क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं, यहां तक कि उनको कुछ उजर बाकी नहीं.
Besides God's works of creation and providence,
खुदा की परवरदिगारी के कामों और तख्लीक के अलावा,
the universe testifies of God's judgment.
और कायनात जो है वो खुदा के अदल को भी जाहिर करती है.
He judges people in this life.
खुदा इस ज़मीन में, इस ज़मीन पर लोगों की ज़िंदगी में उनका इंसाफ करता है.
Verse 18.
18वीं आयत. क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं.
He judges people at their death and in the next world.
और वो ना सिर्फ इस दुनिया में उनका इंसाफ करता है बल्कि जब वो मरते हैं उसके बाद भी और फिर आने वाले जहान में भी.
Verse 32 teaches that.
और 32वीं आयत यही बयान करती है.
The witness of the universe outside man.
इसके अलावा, इस गवाही के अलावा, इन कायनात की गवाही के अलावा,
is that all men ought to praise the one true God for his attributes and works.
तो तमाम इंसानों के लिए जरूरी है कि वो उसकी तमजीद और प्रस्तुति करें उसकी तमाम सिफात के लिए.
All ought to glorify and thank him.
और सबके लिए लाजम है कि वो उसका जलाल जाहिर करें और उसका शुक्र अदा करें.
Verse 21.
21वीं आयत. इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया.
Everyone ought to worship and serve him.
इसलिए हर एक के लिए लाजम है कि वो उसकी तमजीद करे और उसकी खिदमत करे.
Verse 25.
और 25वीं आयत में हम देखते हैं. इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा प्रस्तुति और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है. आमीन.
Beside the testimony of the universe outside us,
कायनात की गवाही के अलावा जो हमारे इर्द गिर्द है उसके अलावा,
there is also a witness to God inside us.
फिर एक और गवाही जो हमारे अंदर है कि खुदा मौजूद है.
Our conscience.
हमारा ज़मीर ये गवाही देता है कि खुदा मौजूद है.
Even regarding Gentiles who are ignorant of the Bible,
हत्ता के जो गैर कौम है जो कि खुदा का यानी जो मसीह पर ईमान नहीं लाती.
Romans 2 verse 15 says.
रोमियो 2:15 जो है वो बयान करती है. चुनाचे वो शरीयत की बातें जो अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है और उनके बामी ख्यालात या तो उन पर इल्जाम लगाते हैं या उनको माजूर रखते हैं. यानी जो गैर कौम में है उनका ज़मीर भी ये गवाही देता है कि खुदा मौजूद है.
Everyone has a sense of right and wrong.
हर एक के अंदर ये समझ पाई जाती है कि कौन सी बात गलत है और कौन सी चीज सही है.
The inner voice of God in every human being.
तो ये ज़मीर की आवाज असल में खुदा की आवाज है जो हमें अपने अंदर सुनाई देती है.
This is key in what makes us human.
तो यही वो बात है जो हमें इंसान बनाती है.
Cows and frogs do not have a conscience.
जो कवे और मेंढक है वो उनके अंदर ये ज़मीर नहीं है.
They are not moral agents responsible ethically to Almighty God.
इसलिए वो खुदा के सामने अखलाकी तौर पर जवाबदेह नहीं है.
All this leads to the inescapable conclusion.
speak up again.
All this leads to this inescapable conclusion.
तो ये सब है, ये हमें एक ऐसी हालत में लाता है जिसे हम भाग नहीं सकते.
Everyone, including unevangelized heathen,
और तमाम लोग हत्या के जिन गैर को मुकुमरादी की गई,
knows the existence and attributes and basic works of God.
तो वो भी खुदा के आम कामों और उसकी खसूसियात से वाकिफ है जो उन्हें कायनात में नजर आती हैं, उनका जमीर.
The glory and blessedness of one God.
और इसी तरह से खुदा का जलाल और उसके मुबारक खाली.
And their duty towards God.
और उनकी खुदा के हजूर जो है वो उनकी जिम्मेदारी क्या है.
Everyone knows this from general revelation outside and inside.
इसलिए आम मुकाशा जो वो ये है जो हमें बाहर नजर आता है और फिर हमारे दिल में जो हमारे जमीर के जरिए से हमें खुदा की मौजूदगी के बारे में सिखाता है.
This witness is divinely authoritative.
और ये जो speak up again.
Divinely authoritative.
Full sentence.
This witness is divinely authoritative.
तो ये जो गवाही है, यानी इस बात से हमें ये गवाही मिलती है कि ये सारा कुछ है, ये खुदा के इख्तियार से है, ये इलाही इख्तियार से है.
It is not merely a human testimony or a suggestion.
ये कोई इंसानी जो है वो राय नहीं है या तजवीज नहीं है.
Verse 19.
19वीं आयत.
Of Romans 1.
Okay. क्योंकि खुदा का क्योंकि जो हक खुदा जो कुछ खुदा के निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातन यानी जमीर में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया.
God has shown it to them.
खुदा ने अपना आप उन पर जाहिर किया है.
This witness is not only authoritative but clear.
ये जो जमीर वाली बात है ये खुदा की तरफ से है, ये कोई अपनी इंसानी वो नहीं है.
No one will be excused on the last day if he lies.
कोई भी झूठ बोलकर अपने आप को आखिरी दिन बचा नहीं सकता.
I couldn't tell what God was like.
या मैं ये नहीं बता सकता था खुदा कैसा, यानी हर एक को जवाब देना होगा.
Verse 20.
20वीं आयत. क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी असली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उजर बाकी नहीं, यानी कोई भी उजर पेश नहीं किया जाएगा.
नोट द फ्रेज क्लियरली सीन.
तो इसका मतलब है यहाँ पर जो साफ बात लिखा गया कि मालूम होकर साफ नजर आती है.
This witness to God is not only authoritative and clear.
ये ना सिर्फ बा इख्तियार है, यानी जो इलाही इख्तियार है, बल्कि ये साफ तौर पर वाज़ह भी है.
It is also universal.
और ये एक आलमगीर बात है, यानी पूरी दुनिया के लिए है.
Here we appeal to Psalm 19, which was sung earlier.
इस यहाँ पर हम ज़बूर 19 का हवाला देंगे जो अभी अभी गाया गया है.
The message reaches everywhere on earth.
ये पैगाम जो है वो पूरी दुनिया तक पहुँचाया गया है.
The heavens declare the glory of God.
आसमान जो है वो खुदा का जलाल जाहिर करते हैं.
And the expanse shows forth that He made them.
और फिर जितनी भी चीजें हैं वो ये जाहिर करती हैं कि कोई बनाने वाला या खालिक मौजूद है.
No part of the globe misses out on this message.
और कोई भी दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है जो इस बात को नजरअंदाज कर सके.
Psalm 19 verse 4.
Okay. ज़बूर 19 उसकी चौथी आयत. उसका सुर सारी जमीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है, उसने आफ्ताब के लिए उनमें खैमा लगाया है.
No language misses out on this non-verbal message.
तो ये जो पैगाम है ये सारी दुनिया तक पहुंचाया गया है या पहुंचा है.
Verse 3.
Psalm 19.
Yes.
ज़बूर 19 और उसकी तीसरी. ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज सुनाई देती है.
And there are some 7,000 plus languages in the world.
और हम देखते हैं कि 7,000 से ज्यादा जो जुबान है वो दुनिया में बोली जाती है.
This testimony of the creation to its creator.
ये जो सारी तख्लीक है जो खालिक का जो बयान करती है या खालिक को खालिक के वजूद का बयान करती है.
Is not only universal but continuous.
जो बात है ये आलमगीर है और ये जारी रहती है.
It never ceases.
ये खत्म नहीं होती.
24 hours a day, every day of the year.
और पूरे साल और 24 घंटे हर दिन में.
Psalm 19 verse 2.
दोबारा से ज़बूर 19 उसकी दूसरी. दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है.
This message about the existence, works and blessedness of God.
ये खुदा की सच्चाई को, उसकी दस्तकारी को, उसकी हिकमत को जो है ये जाहिर करता है ज़बूर जो है.
Reaches absolutely everyone.
और ये बताता है कि ये पैगाम जो है यानी खुदा का पैगाम जो है ये हर एक तक पहुंचा है.
Romans 1 verses 20 and 21.
Romans 1
20 and 21.
کیونکہ اس کے اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور علویت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، یعنی وہ خدا کا اقرار تو کرتے ہیں کہ اس کی موجودگی کا، مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔
Everyone sees, understands and knows this.
اور ہر ایک یہ بات دیکھتا جانتا اور اس کے بارے میں سمجھ رکھتا ہے۔
But what does man do with this witness regarding God?
لیکن انسان جو ہے وہ اس گواہی کے متعلق کیا کرے یا کیا اسے کرنا چاہیے؟
Does he glorify and thank God?
کیا اسے خدا کا جلال ظاہر کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟
Does man worship and serve the Lord?
کیا انسان جو ہے وہ خدا کی تمجید اور اس کی پرستش کرتا ہے؟
No, 1000 times no.
ہزار مرتبہ ہم ایسا نہیں کرتے۔
This is true regarding every man, woman and child.
اور یہ ہر ایک مرد، عورت اور بچے کے متعلق سے ہے۔
Man suppresses this witness.
اور انسان جب اس گواہی کو دباتے ہیں۔
Romans 1 verse 18.
Okay. 18th آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔
That last bit, man holds down the truth in unrighteousness.
تو یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، یعنی خدا کی اس بات کو وہ دبا دیتے ہیں۔
Man suppresses, denies and perverts the truth about God.
اور وہ خدا کی سچائی کو جو ہے وہ اپنی باتوں سے اس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں۔
Regarding God's existence, some deny it.
اور وہ خدا کی موجودگی کا انکار کرتے ہیں۔
Regarding God's attributes, man twists and perverts them.
اور اسی طرح سے جو خدا کی صفات ہے اس کے متعلق بھی انسان ایسے ہی کام کرتا ہے۔
He's not really holy.
کہ وہ ایسا مقدس نہیں ہے۔
He doesn't see everything.
اور وہ خدا جو، یعنی ہم ایسا کرتے ہیں جیسے خدا کو کچھ نظر نہیں آتا۔
He's not all powerful.
اور پھر ایسا کہ جیسے خدا کے پاس ساری طاقت نہیں ہے۔
He will just let me off for my sins.
تو اس لیے میں جو کچھ کروں گا وہ خدا کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔
Even God's works are denied by many.
اور بہت سارے لوگ جب خدا کے کاموں کا انکار کرتے ہیں۔
In the West especially, evolutionism denies creation and providence.
اور مغرب میں خاص طور پر اگر آپ نظریہ ارتقاء پڑھا ہے کہ انسان پہلے بندر تھے، تو وہ خاص طور پر خدا کی موجودگی کا کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔
Moreover, man suppresses the truth about God by substituting idols in his place.
تو پھر حق کو ناراستی سے باہر رکھنا کیسا کہ انسان خدا کی جگہ بت بنانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
This is done by polytheism.
اور یہ جو ہے ایک سے زیادہ خداؤں کی تعلیم ہے۔
Many gods and goddesses.
بہت سارے دیوی اور دیوتا۔
Images and statues are substituted.
اور بڑے سارے مجسمے، بت اور تصویریں بنانا۔
For the one true God.
ایک خدا کے لیے۔
Verse 23 of Romans 1.
وہ اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔
But how could man do something so stupid?
کیسے انسان ایسی احمقانہ حرکت کر سکتا ہے؟
Pride.
اپنے تکبر کی وجہ سے۔
Verses 22 and 23.
وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بیوقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔
Others suppress the truth about God by substituting different idols in his place.
تو وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ حق اور ناراضی سے کیسے دباتے ہیں کہ وہ اس کی جگہ بت بنا لیتے ہیں۔
Some are pantheists.
کچھ لوگ ہیں وہ خدا کے وجود کے منکر ہیں۔
Everything is God.
بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہی خدا ہے۔
Some are dualists.
اور سب جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، وہ دوہری بات کرتے ہیں۔
There are two gods.
کہ ایک نیکی کا خدا ہے، ایک بدی کا خدا ہے۔
A good one and a bad one.
Yes, I already.
And they fight against each other.
اور یہ دونوں جو نیکی اور بدی کا خدا ہے، یہ آپس میں لڑتے ہیں۔
And the good one is a little bit stronger than the bad one.
جو اچھے والا ہے وہ بدی والے سے تھوڑا سا زیادہ طاقتور ہے۔
In the ancient world, this was taught by.
پرانے زمانے میں یہ سکھایا جاتا تھا۔
Mani and Zoroaster.
جو آگ کو ماننے والے زرتشت تھے، ان کو یہ وہ سکھاتے تھے۔
Other people are atheists.
کچھ لوگ جو ہیں وہ خدا کے وجود کے انکاری ہیں، یعنی جنہیں ملحد کہا جاتا ہے۔
No God.
کہ کوئی خدا نہیں ہے۔
Two psalms are dedicated to a treatment of atheists.
دو زبور ایسے ہیں جو ان کے بارے میں بیان، ہم کو کے بارے میں، یعنی جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔
Psalm 14 and Psalm 53.
زبور 14 اور زبور 53.
Let's quote a bit from Psalm 14, which we sang earlier.
तो अभी हम ज़बूर 14 जो है वो पढ़ेंगे, Psalm 14 and verse.
Yep. God calls them fools and reveals that they are wicked.
यहाँ पर लिखा है, अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए हैं, कोई नेकोकार नहीं.
These people do not seek God.
ये लोग खुदा के तालिब नहीं होते.
They seek to escape from God.
वो खुदा से भागते हैं.
Verse 2.
खुदावन ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद खुदा का तालिब है या नहीं.
Why? Verse 3.
वो सब के सब गुमराह हुए, वो बाहम निजस हो गए, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं.
Yet others suppress the truth about God.
कुछ लोग जो हक को नारास्ते बाय रखते हैं.
By substituting less theological idols in his place.
वो उनके अपने जो ज़हन में वो खुदा के मुतालिक जो है वो अपने यानी तरफ से एक खुदा घाट लेते हैं.
Such as the service of money.
मिसाल के तौर पर वो दौलत को खुदा बना लेते हैं, उनके नजदीक खुदा जो उनका दौलत है.
The worship of self.
या वो खुद की जो है वो इबादत करते हैं, यानी खुद नुमाई उनमें बहुत ज्यादा होती है.
The hedonism of sex.
और इसी तरह से फिर ये आपको पता है कि जिंसी जो गुनाह है उसके जरिए से.
Verse 26.
इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी औरतों ने अपने तबाही काम को खिलाफे तबाह काम से बदल डाला.
God judges sin in this world with more sin.
और हम देखते हैं कि कैसे दुनिया में गुनाह और गुनाह पाया जाता है.
Sometimes God gives such people over to heterosexual debauchery.
और हम देखते हैं कि खुदा किस तरह उनको उसी तरह की जो जिंसी उनकी ख्वाहिशात में छोड़ देता है.
Verse 24.
इस वास्ते खुदा ने उनको उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुर्मत किए जाएं.
Other people God gives over to homosexual debauchery.
और इस तरह से हमें आजकल मगरिब में ये बात नजर आती है कि बहुत सारे लोग और पाकिस्तान में भी बड़े सारे लोग जो है वो हम जिंस परस्ती की फेवर सपोर्ट करते हैं, उनकी हिमायत करते हैं, तो खुदा इस तरह से लोगों को छोड़ देता है.
Lesbianism in women, verse 26.
और फिर 26वीं आयत हम देखते हैं कि किस तरह औरतों ने भी अपने तबाही काम को खिलाफ तबाह काम से बदल डाला.
Sodomy in man, verse 27.
और फिर 27वीं आयत में मर्दों के हवाले से इस तरह मर्द भी औरतों से तबाही काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूसियाई के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया.
God gives other people over to bestiality, sex with animals.
और फिर इसी तरह से खुदा लोगों को जो है वो इसी तरह छोड़ देता है जो लोग जानवरों के साथ जो है वो जिनसे ताल्लुक कायम करते हैं.
This happened with the ancient idolatrous Canaanites.
और फिर हम देख इसी तरह ये सारी बातें जो है हमें पुराने अंदामे में कनानियों में नजर आती हैं.
Leviticus chapters 18 and 20 speak of this.
और अबार किताब का 18 और 20 बाब इस बात को बयान करता है.
Some people sadly do this in our day too.
और हमारे इस जमाने में भी हमारे इस दौर में भी बड़े सारे लोग इस तरह के काम करते हैं.
So why do people serve idols?
क्यों लोग जो है बुतों की खिदमत करते हैं, उनकी इबादत करते हैं?
It is emphatically not this.
तो इसके बारे में हमें देखना है.
It is not that they are seeking out for, reaching out for the true God.
क्योंकि वो जो है वो सच्चे खुदा तक रसाई नहीं चाहते हैं, उसके तालिब नहीं हैं.
Instead, they are suppressing the knowledge of the true God.
बल्कि वो जो सच्चा खुदा है उसके उसकी बात यानी उसको उसकी सच्चाई को दबाना चाहते हैं या दबाए रखते हैं.
By substituting a false God in his place.
और वो उसकी जगह जो खुदा नहीं है यानी देवता है या माबूद जो उन्होंने अपने बनाए हुए उसको उनकी जगह पर वो ले आते हैं.
But why do people want to suppress the knowledge of the true God?
लेकिन सवाल यह है कि लोग ऐसा करना ही क्यों चाहते हैं कि वो आपको नारास्ते से दबा देते हैं.
Verse 28 says.
28वीं कहती है.
They did not want to retain God in their knowledge.
और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नलायक हरकतें करें.
Jesus said, "Man loved darkness rather than light."
और यीशु मसीह ने फरमाया कि इंसान जो है वो तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद करता है.
Because their deeds are evil.
क्योंकि उनके अपने काम भी बुरे हैं.
They do not want to come to the light.
और वो रोशनी में आना नहीं चाहते.
Lest their deeds are reproved by the light.
क्योंकि उनको पता है कि अगर हम रोशनी में नूर में आएंगे तो हमारे सारे तरीके के काम जाहिर हो जाएंगे.
And we feel this too when we walk in sin.
और यही हम भी महसूस करते हैं जब हम भी गुनाह करते हैं.
Why do people serve the particular idols or idol that they worship?
اور پھر اسی طرح سے کہ کیوں وہ ایسے جو اور معبود بنا لیے ہیں، انہوں نے ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟
It is because of the interplay of three evil impulses.
اور اس کی وجہ تین جو ہے بری باتیں یا بدی کی باتیں ہیں،
the world, the flesh and the devil.
دنیا، انسانی جسم اور شیطان یا ابلیس.
There are factors like tradition.
اور پھر ہماری روایت، انسانی روایت.
Or people's own inclinations.
اور پھر انسان جو ہے وہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں.
The Philistines did a lot of fishing.
فلسطین میں بہت زیادہ فشنگ کی جاتی ہے، یعنی ماہی گیری کی جاتی ہے، مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں.
So their god Dagon was a fish god.
تو اس لیے ان کا جو کجون دیوتا تھا وہ مچھلی کی شکل کا تھا.
Let's change tack a moment.
اور اس لیے ابھی ہم تھوڑا سا اس کو تبدیل کریں گے بات کو.
Is the general revelation about the existence, attributes and work of God
جو عام مکاشفہ ہے، جو خدا کی صفات اور اس کی تخلیق کے کاموں کو ظاہر کرتا ہے،
Is it sufficient to bring anyone to salvation?
تو کیا اس سے کوئی انسان نجات پا سکتا ہے؟ کیا انسان خدا کی بنائی ہوئی تخلیق کو دیکھ کر یا ضمیر کی آواز سن کر نجات پا سکتا ہے؟
Can someone who's never heard of Jesus in the Bible be saved?
کیا اگر کسی شخص نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا ہی نہیں تو وہ نجات پا سکتا ہے؟
Romans 1 and the whole Bible says no.
رومیوں کا پہلا باب اور پوری بائبل مقدس کہتی ہے کہ نہیں.
First, notice what general revelation's message does not include.
یاد رکھیں یہ پیغام نجات کا پیغام جو ہے یہ عام مکاشفہ میں شامل نہیں ہے.
Romans 1 speaks of many of God's attributes.
جب رومیوں کا پہلا باب ہے یہ خدا کی بہت ساری صفات کو بیان کرتا ہے.
But it did not mention God's love or mercy or grace.
اور یہ خدا کے اس کی محبت کو، اس کے ترس کو، رحم کو ظاہر نہیں کرتا.
Man's conscience, creation and providence.
خدا کا، انسان کا جو ضمیر ہے وہ خدا کی تخلیق پر جو ہے وہ نظر کرتا ہے یا اس پر غور کرتا ہے.
Do not say God loves you.
تو یا ایسا کہنے سے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے.
It speaks of God's anger or wrath.
بلکہ یعنی یہ ایسا بیان نہیں کرتا کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، بلکہ یہ خدا کے غضب کو ظاہر کرتا ہے.
Romans 1:18.
رومیو پہلا باب 18ویں آیت. کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں.
Notice what else general revelation does not testify of.
تو یاد رکھیں جو عام مکاشفہ ہے وہ نجات کے متعلق نہیں ہے.
It says nothing about the incarnation of Jesus Christ.
یہ یسوع مسیح کے تجسم کے بارے میں بیان نہیں کرتا.
It says nothing about his sacrifice on the cross.
اور نہ یہ مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں، صلیبی قربانی کے بارے میں بیان.
It does not say that the only way of forgiveness is in his sacrifice.
اور نہ ہی یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح کی صلیبی ہی قربانی وہ راستہ ہے جس سے ہم، ہماری رسائی خدا تک ہوتی ہے، یا ہم خدا کو پہچانتے اور جانتے ہیں.
The gospel is not written in the forest or the beach.
جو انجیل ہے وہ ساحلوں پر یا جنگلوں میں نہیں لکھی گئی.
For that you need the Bible.
اس کے لیے جو ہے ہمیں بائبل مقدس کی ضرورت ہے.
Also there is man's total depravity.
اور پھر ہمیں انسان کی جو کامل اہلیہ ہے اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں.
What does man do with the witness of general revelation?
انسان جو ہے وہ عام مکاشفہ سے کیا سیکھتا ہے؟
He suppresses it and keeps it down.
اور جو کچھ بھی وہ سیکھتا ہے وہ اس کو بھی دبانے کی کوشش کرتا ہے.
Romans 1:18.
جیسا کہ ہم رومیو 1:18 میں پڑھتے ہیں.
And then he substitutes an idol or idols instead of the true God.
اور اس لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے لیے معبود بنا لیتا ہے.
Verse 23.
23ویں آیت.
Of Romans 1.
اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چھپائے اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا.
Verse 25.
اور پھر 25ویں آیت. اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو اب تک محمود ہے. آمین.
The apostle is teaching deep truth here.
تو جو پولس رسول ہے وہ گہری سچائی کو یہاں پر بیان کر رہا ہے.
General revelation is sufficient in one sense.
عام مکاشفہ اس بات میں فائدہ مند ہے.
But insufficient in another sense.
لیکن اگر ہم نجات کے حوالے سے دیکھیں تو پھر یہ جو ہے یہ کافی نہیں ہے.
General revelation is sufficient to leave man without excuse and condemn him.
اور جو عام مکاشفہ ہے وہ انسان کو ایسے چھوڑ دیتا ہے اور اس کے گناہوں کی مذمت نہیں کرتا.
Verse 20.
20ویں آیت.
Of Romans 1.
کیونکہ اس کے اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں.
Without excuse.
یعنی کوئی عذر نہیں یہاں پہ باقی رہتا.
General revelation is insufficient to save man.
इसलिए आम मुकाशवा जो इंसान की निजात में जब वो काम कोई काम नहीं करता.
That's why we need missionaries bringing the gospel.
इसलिए हमें मिशनरियों की जरूरत है जो कि इंजील को मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाएं.
The injil of grace,
जो फजल की इंजील है,
is absolutely necessary for the salvation of the heathen.
इसलिए वो हर एक की निजात के लिए जरूरी है कि हम इंजील को, यानी जो खुदा के फजल की इंजील है, उसको सुने.
Romans 10 verse 14.
Romans 10
verse 14.
Okay. मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं?
We need the good news of Jesus Christ.
और ये यीशु मसीह की इंजील से मुतल्लिक है.
Son of God and Son of Man.
इब्ने खुदा और इब्ने आदम.
Crucified for our sins.
वो हमारे खताओं के लिए मसलूब किया गया.
Risen from the dead on the third day.
और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा.
You can't see this in the clouds.
You cannot.
You cannot see it in the clouds that Jesus died and rose again. The clouds don't tell you that.
तो ये सारी चीजें आपको जो आम मुकाशवा, यानी जिस तरह बादल है, वो तो आपको ये बात नहीं ना बताते कि यीशु मसीह हमारी खातिर मसलूब हुआ.
The Bible alone brings that message.
तो इसलिए लाजिम है कि हमें ये कहां से पता चलता है? बाइबल मुकद्दस में से.
The Apostle Peter preached this in Acts 4 verse 12.
और यही बात जो है वो हमें
Acts 4 verse 12.
अमाल 4 12 में नजर आती है.
There is no other name under heaven given among men whereby we must be saved.
और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके.
The name of Jesus Christ of Nazareth.
तो ये नाम कौन सा है? यीशु मसीह
नासरी. Forgiveness of sins is only in him.
सिर्फ गुनाहों की माफी जो सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से है.
The one mediator between God and man.
और सिर्फ एक ही दरमियानी है जो हमारी शिफात करता है, वो कौन है? खुदा और इंसान के माबैन सिर्फ यीशु मसीह.
This truth is taught in Belgic Confession Article 2.
और यही जो सच्चाई है ये बेल्जिक इकरार-उल-ईमान के तौज़ी नंबर 2, यानी आर्टिकल नंबर 2 में आई है.
Paragraph 1 deals with general revelation.
जो उसका पहला पैरा है वो आम मुकाशवा की बात करता है. ये सारे जो है ये उर्दू में मौजूद है हमारी वेबसाइट पे. लिखा है वी नो हिम बाय टू मींस, हम उसे दो तरीकों से जानते हैं. फर्स्ट बाय द क्रिएशन, तख्लीक के जरिए से, प्रिजर्वेशन उसको कायम रखने के वसीले से, और गवर्नमेंट ऑफ द यूनिवर्स के खुदा कायनात को इस तरह संभाल रखता है और उस पर हुकूमत करता है जो कि हमारी आंखों के सामने है. विच इज बिफोर एज अ मोस्ट, और ये खुदा की समझ एक किताब है जो हमारे सामने है, यानी जो तख्लीक है. और सारी चीजें जो है वो चाहे बड़ी हैं या छोटी, वो एक अनदेखे खुदा की कुछ जाहिर करती हैं जो जिसकी कुदरत और लुहियत पौलुस रसूल 1:20 में जाहिर करता है. और सब चीज़ें इस बात के लिए काफ़ी हैं कि कुछ उज़र बाकी नहीं रहता.
This is what we've been teaching from Romans 1.
और रोमियो जो है पहले बाप से हम यही सारा कुछ सीख रहे हैं.
So general revelation is sufficient to leave man without excuse.
इसलिए जो आम मुकाशवा है वो इंसान को इस तरह छोड़ देता है कि कोई उज़र बाकी नहीं रहता.
Special revelation is sufficient to save.
अब दूसरे जो इलाहियाती मौज़ू है वो है खास मुकाशवा जो इंसान की निजात के बारे में बात करता
है. If blessed to our heart by the Holy Spirit.
और ये मुकाशवा हमारे अंदर कैसे जाहिर होता है? रूहुल कुद्स के जरिए से.
Paragraph 2 of Belgic Confession 2 teaches this.
और दूसरा पैरा हम पढ़ेंगे उसमें लिखा है, Secondly, he makes himself more clearly and fully known to us by his holy and divine word. कि उसने अपने आप को अपने पाक नाम और अपने पाक कलाम के जरिए से वाज़े तौर पर हम सबको, हम सब पर जाहिर किया कि हम उसे जान सकें, क्योंकि ये हमारी जिंदगी के लिए जानना जरूरी है कि उसके जलाल के लिए और हमारी निजात के लिए हमें उसे जानना जरूरी है. और ये खास मुकाशवा हमें कौन अता करता है? रूहुल कुद्स.
Thus we return to the existence of God.
और जब हम इस मौजू खुदा की मौजूदगी का खुलासा करते हैं या उसके हासिल कलाम पर आते हैं,
God is the highest existence.
और खुदा की मौजूदगी जो है वो मतलब बहुत आला उसकी मौजूदगी है.
He is eternally existent.
वो अज़ली रब्दी, यानी अज़ल से मौजूद है.
He is necessarily existent.
और ये लाजम है कि वो मौजूद हो, ये यानी जरूरी बात है उसकी मौजूदगी.
He is self-existent.
और वो उसे मौजूदगी के लिए वो किसी दूसरे पर इन्हेसार नहीं करता.
The eternally existent one gives and maintains the existence of everything else.
और उसकी मौजूदगी जो है वो हर चीज को बरकरार रखने संभाले रखने और कायम रखने के लिए जरूरी है
according to his eternal plan and purpose
और उसका जो भी मंसूबा और इरादा है
through six day creation
जो हम छह दिनों की तखलीक में देखते हैं
and by his mighty providence
और फिर उसकी परवरदिगारी के काम में कि वो किस तरह सारा कुछ जो है वो चलाता है इस जमीन पर
session 6
और छठा सेशन
session 6 yeah the existence of all creatures is only temporal
all creation are temporal.
All creation temporal.
तो हम जानते हैं कि ये कुछ चीजें जो ये आरजी हैं.
We are contingent and dependent on God.
हम खुदा पर जो है वो इन्हसार करते हैं.
He's the creator. We are mere creatures.
और वो खालिक और हम महज मखलूक हैं.
Utterly dependent on Almighty God every moment.
और हर लम्हे हमें उसकी जरूरत होती है अपनी हर एक काम के लिए अपनी हर एक बात के लिए.
And we know God's existence as Christians
aur hum batour masih khuda ki maujoodgi ke hawale se
because he is the God of love and grace in Jesus Christ
hum masih iman rakhte hain ki khuda ki maujoodgi isliye bhi zaruri hai ki yeesu masih ke wasile se hame fazl aur jo hai nijaat milti hai uske wasile se
we only know God through Jesus
aur hum sirf aur sirf yeesu masih ke zariye se khuda ko jante hain
Jesus means Jehovah salvation
yeesu masih ka yeesu ka matlab hai yahwa ki nijaat
he is the incarnate and crucified son
aur wo masloob kiya gaya beta hai aur jisne tajassum liya
what therefore is our calling before him
phir hamara bulawa kya hai yani hamari zimmedari khuda ke huzoor kya hai
As Romans 1 says,
जिस तरह रोमियो पहला बाब फरमाता है,
we glorify and thank him.
कि हम उसका जलाल जाहिर करें और उसका शुक्र अदा करें.
We worship and serve him.
हम उसकी तमजीद करें और उसकी खिदमत करें.
As the God of general revelation out there,
और जिस तरह खुदा ने सब कुछ बनाया है आमुकाश्वा.
And the God of special revelation,
जिस तरह खुदा ने अपने आप को आमुकाश्वा में और फिर खास मुकाश्वा में
जाहिर किया. In the 66 books of the Bible,
और इस तरह से बाइबल की 66 किताबों में खुदा ने खुद को जाहिर किया है.
He is both our creator,
वो ना सिर्फ हमारा खालिक है.
And our redeemer,
वो हमारा निजात दहिंदा भी है.
In the blood of Jesus Christ,
यीशु मसीह के खून के वसीले से.
Amen and hallelujah.
आमीन और हालेलुया.
Amen.